धोखे में पड़े हुए। मैंने पिछले सालों में एक वाक्य सुनाया था, दोबारा नहीं सुनाना चाहती, कि किस तरह एक औरत जो शुरू के सालों में मियां बीवी सिर्फ इसलिए बच्चा नहीं पैदा कर रहे कि अभी पढ़ लें, अब घर बन लें, कर करा के 10 साल के बाद जब ख्वाहिश की, फिर अल्लाह ने अपनी मर्जी से देना था, और जब बच्चा हुआ 1 साल 1.5 साल में शौहर की डेथ हो गई, तो मेरे सामने वो सिस्टर का चेहरा आ जाता है कि क्यों लेते हैं, अल्लाह जब देता है तभी देगा, मेरे आपके कहने से नहीं होगा। दुआ के अल्फाज सूरत मरियम में किस तरह से हैं, जिक्रु रहमती रब्बी का अब्दहु जकरिया इस नादा रब्बहु निदान खफिया قال رب إني وهن الأسم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا। मैं कहती हूँ कि इसको अगर सोने के पानी में लिख सके ना, तो इस दुआ को आप लिख सकते हैं। जिनको भी औलाद मांगनी है अल्लाह से इन लफ्जों में, रब की रहमत का अपने बंदे जकरिया पर, जब उसने अपने रब को पुकारा, चुपके चुपके पुकारना, ऐसे ऐसे तो बोल रहे थे, मरियम भी तो पास बैठी थी ना, क्योंकि बाज दुआ ऐसी होती है बंदा किसी के सामने नहीं मांग सकता। लोग कहेंगे देखो बुढ़ा खोसट औलाद मांग रहा है, ये देखो बूढ़ी औरत शादी का पूछ रही है, नहीं अल्लाह से पुकारो। और क्या कहा, कहा है मेरे रब बेशक मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आजजी। ये वही बात है, या कना बुदो या कनस्ताई, पहले आप टूटे तो सही अल्लाह के आगे कि अल्लाह मैं बड़ा कमजोर हूं, और देखो मेरा सर बुढ़ापे की वजह से सफेद हो रहा है, शोले मार रहा है, क्योंकि पहले दौर में लोग सफेद बालों को छुपाने के लिए सुर्ख मेहंदी लगा लेते थे, तो दूर से ऐसे लगता है सर पे आग लगी हुई है, यानी मेरा सर सफेद है। लेकिन वलम अकुम भी दुआ कर रब्बी शकिया, ए रब मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा, ये है उम्मीद। उदुल्लाह अंतुम मोकिनून बिल, इसकी कबूलियत का यकीन रखो। हम कहते होना तो कोई नहीं मांग लेते, ये कि हाउ इज इट पॉसिबल, लेट देख लो डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, और मीनोपॉज हो गया, और 60 40 साल के बाद तो बच्चे होते नहीं, होंगे भी तो हैंडीकैप होंगे, कितनी मुसीबतें मरी जान को लगी हुई है। अच्छा सोच लेते हैं, कहा मैं अपने रिश्तेदारों से डरता हूँ अपने बाद, यानी मैं तो आज इनकी सलाह कर रहा हूँ, मेरे बाद कौन करेगा, इसलिए चाहता हूँ कि कोई बच्चा हो जाए और मेरी बीवी आके रहे, जड़कटी है यानी भांज है, बस अपने पास से मुझे वली दे दे जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी हो। और सबसे बड़ी प्यारी दुआ, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, अपने बच्चों के लिए मांगा करें, अभी आ गए हैं तब भी, और अगर नहीं आए आने वाले बच्चों के लिए, वज अलहो रब्बी रदिया, ए अल्लाह तू मेरे बच्चे से राजी भी हो जा, यानी ऐसा बच्चा मुझे दे जिससे तू राजी हो। हम अमूमन क्या कहते हैं, हमारे बच्चे हमें राजी करें। देखिए अगर आप एक सबक अपने बच्चों को सिखा दें कि इन दुआओं से, पहली बात हमेशा अल्लाह से मांगिए, दूसरी बात यकीन और भरोसे से मांगिए कि अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है, तीसरी बात असबाब से बढ़कर अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए और कभी मायूस ना हो, और अल्लाह के दीन के लिए मांगिए, क्योंकि औलाद पे एक खास रोक होता है बंदे का, दूसरों पे नहीं चलता वो। खैर, और जरूरियतन तैयबा मांगा, बाज लोग औलाद तो मांगते हैं लेकिन नेक औलाद मांगिए कि जो औलाद हमारे लिए पकीज़ औलाद भी हो, और अल्लाह ने सुन ली। अब आप देखिए कि फौरन दुआ मांगी, सब कुछ फौरन से फौरन हो रहा है। आयत 39, फनादतुल मलाइकतु, तो फरिश्तों ने इनको निदा दी, वहुवा काइमु युसल्ली फिल महराब, जबकि वो अपने हुजरे में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। क्या कहा फरिश्तों ने, ये फरिश्ते का कॉल है, अन्नल्लाह युबशिरु कभी यहया, कि अल्लाह ताला आपको बशारत देता है यहया की, बेटा नहीं का यहया नाम भी रख दिया अल्लाह ने, हजरत यहया की ये खूबी थी कि इनका नाम अल्लाह की तरफ से था, और यहया हय्युन से जिंदा जिंदगी वाला, क्योंकि ये बुढ़ापे की औलाद के साथ ही गम भी तो लग जाता है ना, क्या पता नहीं इसकी उम्र कितनी है, तो कहा यह फिक्र न करो लंबी उम्र होगी, मुसद्दिकम भी कलीमत मिन अल्लाह, जो तस्दीक करेगा अल्लाह की तरफ से कलेमे की। ये कौन सा कलेमा है? लिखिए कलीमतिल्लाह के नीचे लिख लीजिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये बात आपको आगे जाके समझ आएगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। यानी हजरत ईसा की तस्दीक करेंगे, क्योंकि हजरत ईसा बिन बाप पैदा होने वाले थे और लोगों ने उनको झुठलाना था। तो ये उनसे उम्र में तकरीबन 3 माह का फर्क आता है। कहते हैं कि ये दोनों आपस में थोड़ा सा फर्क था, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इधर ये बात बता दी कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे, यानी उनको मान लेंगे। और क्या खूबी होगी? और आयत नंबर 44 में ये लफ्ज हजरत ईसा के लिए आएगा, भी कलीमत मिन्हो के लिए। अगली अगली खूबी नंबर 2 लगा लीजिए, बस सईदन सरदार होंगे। अब जरा हजरत जकरिया का दिल सामने ला के जरा सोचें, मांगा क्या बेटा और क्या क्या मिल रहा है? सरदार यानी बेटा आपका कामयाब होगा, अल्लाह उसको दुनिया में बड़ा बनाएगा। और क्या होंगे? वह हसूरा और हसूर होंगे। हसूर क्या है? हसीरा से। किसको कहते हैं हसीरा? हिसार किसको कहते हैं? वो कई लोग हिसार बांधते हैं ना, ऐसे हिसार। हसूर हसीरा से सेल्फ कंट्रोल्ड, नफ्स पे काबू पाने वाला, यानी करप्ट बेटा नहीं होगा, इस ताड़ेगा और उनसे मैसेजिंग नहीं करेगा, बल्कि बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड होगा। वह नबी यम मिन सालेहीन, और नबी होगा सालेहीन में से। देखिए यहां बेटे के साथ साथ नबूवत की भी खुशखबरियां मिल गईं। अब हजरत जकरिया को क्या करना चाहिए था? थैंक यू अल्लाह, दुआ मांगी कबूल हो गई, इतनी खूबियां मिल गई। लेकिन जरा सोचिएगा बशरियत का तकाजा, काल रब्बी अन्ना यकून ली गुलामन। जकरिया ने कहा परवरदिगार मेरे यहां बेटा कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? तो कोई पूछे फिर मांगा क्यों था? ये है इंसान की कमजोरी, पहले मांगता है और जब चीज मिलती है कहते हैं ये कैसे हो गया। कभी आपने लोगों को सुना है बिजली गई हो, कहते हैं हाँ अल्लाह करे बिजली आ जाए, फौरन आ जाती है, तो कहते हैं हाँ और कुछ मांग लेती। ये भी ना शुक्री, भी शुक्र करो, कुछ और मांग लो, हो सकता है कबूलियत का वक्त अभी भी हो। वक्त बलगनी यल की बरू, जबकि मैं तो इंतहाई बूढ़ा हो चुका। वह अमराती आखिर, और मेरी बीवी बांझ है, यानी कोई फिजिकली फिट नहीं है। मर्द बूढ़ा है, औरत पहले ही बांझ है, और जाहिर है उम्र भी बढ़ गई। ये असबाब है, यानी अब जकरिया ने असबाब पे गौर किया। قال كذلك الله يفعل ما يشاء, अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह जो चाहता है वो करता है। यानी अल्लाह ताला को असबाब की जरूरत नहीं होती, अल्लाह की जात बंदे के करीब है, इसलिए जो हुआ सो हुआ, यकीन नहीं आ रहा। जैसे देखिए आज के दौर में तो कोई प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि हो गया बच्चा कि नहीं, तो इनको कंफर्मेशन चाहिए थी कि ये कैसे होगा। तो आयत 41, काल रब्बे जल लिया या, उन्होंने कहा परवरदिगार मेरे इत्मीनान के लिए कोई निशानी मुकरर करें, यानी मुझे यकीन आ जाए कि वाकया वैसा होगा। जो बात मैं सुन रहा हूँ ये आपकी तरफ से है, कहीं मेरे नफ्स का कोई गलबा नहीं या शैतान तो नहीं ये बातें भूक रहा। तो काल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन्नास थलासता अय्याम, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए निशानी ये है कि अब तुम 3 दिन तक लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे, इल्ला रमजा, मगर इशारे किनाए में, यानी बोलोगे नहीं अल्लाह का जिक्र करोगे। और ये भी हो सकता है कि बोलने की कुव्वत ही खत्म हो जाए। करो क्या इन दिनों में? वस्कुर रब्बक कसीरा, और अपने दिल में अपने रब को कसरत से याद करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नेमतों का एहसास बंदे की जुबान बंद कर देता है। बस दफा जिंदगी में इतनी बड़ी नेमत मिलती है कि बंदा बोल ही नहीं सकता, यकीन ही नहीं आता, गूम गू की कैफियत। आप सोचें कोई ऐसी सिस्टर या ऐसे ब्रदर जिनकी ये उम्र हो चुकी औलादी, तो फिर वो क्या करेंगे? आज तो बहुत कुछ तरीके हैं ना हमारे खुश होने के, अभी खुशी हाथ में भी नहीं आई होती तो कहीं बेबी शावर और कहीं गोद भराई, लोगों को बुलाते, एक पार्टी रखते। वो बातें जो पहले कल लोग छुपाते थे, आज टेस्ट क्लियर आए तो सही, घर के बच्चे बच्चे को पता चल जाता है कि बस अब एक मेहमान आने वाला है। आप 20-25 साल पीछे जाके देखें, ये बात बुरी समझी जाती थी कि किसी के प्रेग्नेंट होने का पता चल जाए। घर वालों से छुपाते थे, मर्दों से छुपाते थे, मियां बीवी आपस में कहते इस मौजू पे बात ही नहीं करते थे। अब तो शादी से पहले तक बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं, आपको पता है? बेटा होगा तो ये रखना, बेटी होगी तो ये, और हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। शादी होगी तो अंडरस्टैंडिंग का फायदा होगा, वो पहले ही मामले खत्म हो जाते हैं। हया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फाइज लम तस्ता ही फर्स्ट नंबर। खामोश रहना चाहिए, शुक्र करें। कभी आपको कैसी नेमत मिले तो उसको छुपाएं। हदीस में आता है, यानी खुलासा है, हदीस का लफ्ज काट दें, यानी रिवायत में आता है कि जब किसी नेमत का बहुत ही इजहार कर देना तो वो फिर नेमत नहीं मिलती। आप देखिए कि बाज दफा जो कल्चर चल पड़ा है वो क्या है, बच्चे से पहले उसका कमरा से तैयार, उसकी टोपियां तैयार, उसकी सजा दिया, बेबी शावर करके सारी दोस्तों से भी गिफ्ट्स लोग ले लेते हैं। यहाँ का मुझे नहीं पता लेकिन अमेरिका में होता है, मैंने खुद बड़े दर्स दिए हुए हैं बेबी शावर्स के मौके पे। हॉल सजाते हैं, पहले ही पता है ये ब्लू है क्योंकि अल्ट्रासाउंड से पता चल गया बेटा, फिर गिफ्ट्स आते हैं। आप कभी बेबी शावर की हिस्ट्री पढ़े, मैंने इस पे भी एक तब लेक्चर दिया था बड़े पुराने लेक्चर्स में, कि वो बेचारे क्यों देते थे, गरीब होते थे कि चलो बच्चे होने से पहले कुछ इनकी मदद कर दो। अब हमने उसको भी एक रस्म बनाया और बच्चा हाथ में नहीं आता, बच्चा मर गया पेट में, अब वो सारी चीजें रोना देंगी ना। जब चीज आएगी हाथ में, थोड़ी बहुत तैयारी कर ले, जब चीज आएगी ले आइएगा। बाजार सच गया आज सिर्फ इस बात पे कि आ रहा है एक मेहमान, तो जिसको आप ऐसे बुत बना के पूजेंगे वो आपके सर पे नहीं चढ़ेगा क्या? जिसको आप टेढ़ी चम्मच के बगैर खाना ही नहीं खिला सकते। आज हमने अपने बच्चों को खुद ही सर पे चढ़ा लिया और उनको कोई केयर भी नहीं होती इन बेचारों की। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये सारी बातें हमारे सामने रख दी और पता चल गया हमें कि नेमतों के मामले में इंसान का रवैया शुक्र, जिक्र और तस्बीह वाला होना चाहिए। कसरत से तस्बीह करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अब आप देखिए कि बीच में सब चीजें कट डाउन, ऐसे नहीं है कि हमें कहा अच्छा इसके बाद ये हुआ वो हुआ बस ये बात हो गई कि खत्म। जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये खुशखबरी दी। अब अगली आयतों में दो आयतें हमारे पास और, जिसमें तीन आयतें, बीबी मरियम की जवानी का तذکرہ। सिर्फ खुलासा कर दूंगी क्योंकि इसके ऊपर बात जो है वो आगे आएगी। वइस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह हसनिसाइल आलमीन। और याद करो वो वक्त जब फरिश्ते ने बीबी मरियम से कहा कि मरियम बेशक अल्लाह ने तुमको चुन लिया और तुम्हें खूब पाक कर दिया और तुम्हें तमाम जहान की औरतों पर तरजीह दी, यानी तुम चुनी गई, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ये बात कब हुई? जब बीबी मरियम जवान हो गई, बालिग हो गई, बचपन से इबादत की आदत डली, मेहराब में इबादत करती थी। एक दिन फरिश्ता आ गया पास, सूरत मरियम में हम डिटेल्स पढ़ेंगे इसकी। फरिश्ते ने आकर खुशखबरी दे दी कि मरियम अल्लाह ने तुझे चुन लिया सारी दुनिया की औरतों पे। क्या पता चला कि पाक बेटियां कौन सी होती हैं जो अपने आप को इबादत में लगा देती हैं। फिर फरिश्ते आते हैं, कभी आप इस ठंडक को पाक के तो देखें। पहले तो हम कहते थे जी आंखों से देखना, चल के जाना, अब सारा दिन तो हाथ इस्तेमाल होते हैं। जब कोई तहरकी के दर्जे पे पहुंच जाता है तो फरिश्तों की खुशखबरी है और चुन लिया तुम्हें। पीछे किसका जिक्र था? सारे मर्दों का। यहां किसका जिक्र आ गया? औरत का आ गया। तो अल्लाह औरतों को भी चुनता है। चुनी गई हो तो क्या करो? विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी हो जाओ? नहीं, या मरियम उकनती ली रब्बिक, ए मरियम मुसलसल अपने रब की फरमाबरदारी करती रहो आजजी के साथ। वसजुदी वरकई मा राकीईन, और सजदा करती रहो और रुकू करती रहो रुकू करने वालों के साथ। ये देखिए बाजमात नमाज की तरफ इशारा है। एक औरत के लिए फीमेल के सीगे हैं और उस दौर में रिवाज नहीं था जमात की नमाज का। पीछे बात की थी आपको दूसरे बारे में, वहां बनी इसराइल को कहा गया था कि वरकउ मा राकीईन, वहां इशारा क्या था कि तुम्हारी यहूदियत में जमात की नमाज नहीं थी, तो इशारा था कि मुसलमानों में शामिल होकर जमात की नमाज पढ़ो। यहां औरत की जमात की नमाज का इशारा कि तुम भी नमाज पढ़ो, सजदे करो। क्या पता चला कि जब अल्लाह चुने तो इंसान की इबादत बढ़ जानी चाहिए। आम लोगों को भी जरूरत होती है, लेकिन जिनके हाथों में कुरान आ जाए फिर उनको तो इबादत में बहुत ही मजा आना चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको इसमें मजा दे। कहानी सुना के आखिरी आयत अल्लाह के नबी को पुकारा जा रहा है, जालिक मिन अम्बाइल गैब, जालिक मिन अम्बाइल गैब नुहीही इलैक, ये गैब की खबरों में से है जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी तरह वही करते हैं। यहां से क्या पता चलता है कि ये वाकया जो अल्लाह के नबी को सुनाए जा रहे थे ये वही का हिस्सा थे, आपके नफ्स की बातें नहीं थी। वमा कुंत लदैहिम इज जुल्कून अक्लामहुम, और आप तो इनके पास भी मौजूद क्यों, ताकि अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि ये तय किया जाए कि इनमें से कौन मरियम का कफील होगा। वमा कुंत लदैहिम इज यख्तसिमून, और ना उस वक्त इनके पास मौजूद थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। ये किस झगड़े की बात है, बीबी मरियम बचपन में किसकी किफालत में जाएंगी, सभी लोग चाहते थे कि हम लें। देखिए माँ बाप की नेकियां औलाद के काम आती हैं, सूरत अल कहफ में भी हम पढ़ेंगे कि यतीम बच्चों का अल्लाह कैसे निगेबान होता है, शर्त क्या है कि माँ बाप की जिंदगी खूबसूरत हो। इधर भी यही देख रहा है, हर एक चाह रहे हमें मिले, हमारे पास हो। तो कुरानदाजी की वो कलम जिनसे तौरात लिखते थे, अल्लाह की तरफ से एक इशारा मिल गया कि एक दरिया है उसमें फेंको कोई भी जगह पानी की, सबके कलम किधर जाएंगे, पानी के रुख पे। जकरिया का कलम पानी से ऑपोजिट रुख पे खड़ा हो गया। तो ये एक इशारा था कि बीबी मरियम की किफालत, फैसला ना हो पा रहे हो तो कुरानदाजी की जा सकती है। बस एक सूट है या दो सूट है, दो बहनों को लेने हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा ले ले, तो कुरा कर लीजिए, जिसके नाम पे जो आया कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। आगे खजर यूनुस के जिमन में भी फसा के लफ्ज से आएगा कि कुरानदाजी की थी जब कश्ती में वो थे। फिर इसी तरह बाज दफा नबी सल्लम भी ऐसे मामला जिसमें कोई फैसला आमतौर पर ना हो तो कुरानदाजी करते थे, लेकिन अब कुरानदाजी को आप लौटों में ना बदल दें और इसमें पैसे रुपए को ना रखें। सिंपल सी बात है, अच्छा भाई कौन पहले करेगा, चलो भाई आप ये काम करेंगे, आप क्या मैं कर लो, देखते हैं क्या होता है, कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इस पे कोई पैसा नहीं होना चाहिए और इसमें कोई माली मामलात नहीं होंगे। दूसरी बात यहां से पता चलती है कि नबी सल्लम गैब नहीं जानते थे। वमा कुंत लदैहिम, ये पहला मौका है जहां ये मौजू आ रहा है पूरे कुरान में, शायद 3 से 7-8 दफा है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा वमा कुंत, आप तब मौजूद नहीं थे। सल्लम के नाम पे लोग कहते हैं आप हाजिर भी आपको पता है और आज के भी पता है, तो ये गलत फहमी का नतीजा है। अल्लाह कहते हैं आपको नहीं पता था, हाँ जो हम देते हैं वो पता चलता है। तो ये था आज का सबक, बहुत ज्यादा हम सबको अपने हालात पे नजर रखने वाला। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी ही मोहब्बत दे जैसी बीबी मरियम की माँ को अल्लाह ताला से थी, और अल्लाह ताला हमें अपने लिए चुन ले जैसे उसने बाकियों को चुना। कोई बात जो आप शेयर करना चाहें या पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना इसके बाद नमाज और खाना। क्या सीखे आज के सबक से जी, आप इधर आइए इशमाइला। अच्छा जल्दी से जब मैं कहूँ तो 3 सेकंड में आ जाए करें, क्योंकि ये वक्त सब पे जमा करें तो कितने सेकंड बन जाते हैं। क्या सीखे आराम करिए जी, शेयर करें जल्दी से। जी आप सब बच्चियां हैं, बड़ी बड़ी आई है, फटाफट आप शेयर करें क्या किया कि आपने, कुछ नहीं सीखा। आप लोग भी आ जाओ बच्चों फट फट।
बच्चों की आपके लिए अच्छी स्थिति करनी है। बीबी हन्ना और बीबी मरियम ये जिस तरह की औरतें आज के दौर में बहुत कम दिखाई देती हैं, और उनसे ही हम इतने लेसन ले सकते हैं, इतना सीख सकते हैं कि उनमें कितना जिसना हमें मर्दों की इतना जरूरत नहीं है कि वो जितना कर सकती थी तो हम नहीं कर सकते। हम हर छोटी छोटी बात पे कहते हैं ओ मेरा मर्द नहीं है या मेरा भाई नहीं है या ऑब्वियसली हमारे महरम होते हैं, लेकिन जब इस तरह की बातों पे उनका जो तवक्कल का और ईमान का लेवल था हम उससे बहुत सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
आज के लेक्चर में हिस्ट्री पता चल रही है, आज के लेक्चर में सब हिस्ट्री पता चल रही है बेबी बाइबल की। और अगर प्रॉब्लम्स आए तो आपको दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह के लिए करनी
चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी आप सुन जी जरूर। इंशाल्लाह ये दुआ हम लोग डाल देंगे वेबसाइट पे, और ये हिस्नुल मुस्लिम में भी है जो आपके पास कोर्स की बुक है। जी आप प्लीज।
मैंने आज ये जो पूरा लेसन सुना अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करनी है, और सारी बहनों को ये बात शेयर करनी चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड जो है वो इस चीज में मेरे साथ नहीं थे बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मैं यहाँ से सुन सुन कर जाती रही, थोड़ा थोड़ा मैं अपने हस्बैंड को किसी न किसी तरीके से बताती रही सुनाती रही। तो मेरे हस्बैंड ने बचपन से कुरान शरीफ नहीं पढ़ा था क्योंकि वो बहुत छोटे थे, यतीम की जिंदगी गुजारी, महरूम रहे थे सारी चीजों से। मैंने हद्दुल इम्कान अपने घर की माहौल को इस्लामी तरीके से बनाने की कोशिश करी, और इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले यही सोचा कि अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को नहीं चेंज करूंगी तो इतने सारे लोगों का मुझको देना होगा। खुशी की बात है कि लास्ट वीक मेरे हस्बैंड ने सुबह की नमाज के वक्त मुझसे कहने लगे कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं डर गई, मैंने कहा कि शायद कि वो मुझसे कहेंगे कि आप नहीं जा सकती, मेरा दिल लरज रखा। लेकिन उन्होंने मेरे घुटने के ऊपर हाथ रख के मुझसे कहा कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, और मैं कहूँ जो मेरे पोता पोती जिनसे कुरान पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि उनसे कहें कि वो मुझको कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। तो मैंने इतना शुक्र शुक्र किया और सीधा किया इस बात के ऊपर कि अल्लाह तू इस तरह से बदल देता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए अल्लाह ताला ने मेरे आंसू कबूल कर लिए, और मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मेरा अब उनके साथ है। अब मैं पहले मैं उनके लिए सब कुछ करके आती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले खुद जान के देर कर दिया करते थे, नीचे अब देर हो रही है।
चले अल्लाह ताला इस नेमत को कायम रखे। आप देखिए कि अगर हम चलते रहे इखलास के साथ और अच्छे तरीके से तो सब साथ आते हैं अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी। कौन सी वाली? रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वजअल्हु रब्बी रदिया। ये सूरह मरियम की शुरू की आयतें, आयत नंबर 7 तक, आयत नंबर 2 से 7 सूरत मरियम। अभी मैंने आपको उसकी तर्जमा बताया ना, वजअल हु रब्बी रदिया। ठीक है चलिए नमाज पढ़ते हैं और इंशाल्लाह फिर उसके बाद ब्रेक। ऑनलाइन पे भी कुछ है, एक दो पढ़ती हूँ मैं आपके कमेंट्स जो भी लिखे हुए, और इंशाल्लाह बाकी फिर आप लोग बाद में पढ़िएगा। अल्लाह सुब्हान तआला हमें इस काबिल बनाए कि हम भी उनकी सही तरबियत कर सके। मजबूत थी तो अपने दीन में, यानी मतलब वो अपने दीन में शुरू से मजबूत थी। अल्लाह ताला हमें बीबी मरियम की माँ की तरह बना दे, आमीन। ٹو امپروو اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں اپنے عبادت کو بڑھانا ہے, اور خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ اور سب کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیر کثیر صاحب. ہمارا ماشاء اللہ آج ایک اور لیسن مکمل ہوا اللہ تعالیٰ کے احسان سے. انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کا ریکیپ ہم بریک کے بعد کریں گے. تو آپ لوگ فی الحال ایسا کریں کہ اپنی چھوٹی سی بریک کریں اپراکسیمیٹلی, آپ انشاءاللہ 15 منٹس کی بریک کر لیں. ٹھیک ہے, 15 منٹس کی بریک کر لیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد آپ لوگ واپس آئیے گا. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.